जनों देवियों। अगला स्लाइड, हम आज सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे भाग चैप्टर के आज ये 20वां भाग है, 20th पार्ट है। अगले स्लाइड में स्वामी जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, जिसकी चर्चा हमने की थी, हमारे जीवन में जो जो धर्म है, जो उद्देश्य है, जिसलिए ऋषि मुनियों ने जिस तरह के विचारों को सोचा था और जिस तरह का धर्म धीरे 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 सामाजिक इतिहास के कारण से बदलने लगा, उसमें कुछ विकृतियां आने लगी, कुछ बदलाव आने लगे, कुछ चेंजेस आने लगे, कभी कभी कुछ बुराइयां भी आने लगे, उन सबको सामने रख के कि एक सही धर्म क्या होना चाहिए, एक सही जीवन क्या होना चाहिए, एक सही शिक्षा क्या होनी चाहिए, और वो उनकी वो अपनी दृष्टि नहीं थी, कि आप कहेंगे कि वो उनकी अपनी सोच होगी, जो भारत के ऋषि मुनियों का हजार हजार सालों का जो सोच है, जो बाद में अलग अलग ऐतिहासिक कारणों से छुप गया, धूमिल हो गया, उसको रिवाइव करके, उसको पुनर्जीवित करके हमारे सामने रखना उनका उद्देश्य था। इसी प्रसंग में जो हम दो तीन हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में जो मूल उद्देश्य से भटक के हम थोड़ी बहुत इधर उधर रास्ते में चले गए, उनके बारे में सचेत करना, कि बताना कि सही रास्ता क्या है और हम किस तरह भटक गए और वो कितना निरर्थक है या सार्थक है, हम खुद सोच सकते हैं। आज जो विषय जो स्वामी जी के हम छेड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हम अलग अलग तीर्थों में जाते हैं कि इससे तीर्थ गंगा में नहाने से, यमुना में नहाने से, नर्मदा में नहाने से, वा किसी खास नदी विशेष में नहाने से या किसी तीर्थ स्थल पर जाने से पाप घट जाते हैं, पुण्य आता है, इस तरह के कंसेप्ट लेकर के हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे धर्म का जो उद्देश्य था वो कहीं छूट गया और हम धर्म के नाम पर किस तरह के विचित्र स्थितियां लाए और उसका परिणाम जो रिजल्ट हमें दिखा कि लोग अंदर से धार्मिक कम बने और धार्मिक का जो दिखावट है, इसको आपको हिपोक्रेसी कहते हैं, जो पाखंड है वो बढ़ने लगा। तो उनमें से एक है कि तीर्थ जाने से आप बनारस जाएं, वृंदावन जाएं, तिरुपति जाएं या रामेश्वरम जाएं, द्वारिका जाएं, या जरूरी नहीं कि आप हमारी अपने धर्म की बात करें, दूसरों की धर्म की भी बात करें, आप जेरूशलम जाएं या मक्का जाएं, इससे आपके हमारे पाप घटते हैं, ये सही बात नहीं है। ये फैक्चुअली, ये तथ्यात्मक दृष्टि से भी करेक्ट नहीं। पाप पुण्य का अर्थ होता है जो मैंने बुरा काम किया, वो बुरा काम का फल जब तक मुझे नहीं मिलता, वो जो सेविंग अकाउंट में रहता है उसी को हम पाप कहते हैं। अगर मैंने आपको एक थप्पड़ मारा और आपने बदले में मुझे एक या दो या चार थप्पड़ मारा, तो मेरे हिसाब बराबर हो गया, तो ना मुझे पाप लगा ना आपको पाप लगा। पर अगर मैंने मारा और आपने मुझे नहीं मारा, तो मेरे इस बुरे काम का फल मुझे मिला नहीं, इसी को हम पाप कहते हैं कि जो अकाउंट में आपका रहा। इसी तरह मैं कोई अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट मुझे मिल गया, वो पुण्य नहीं होता है। आपने किसी का भला किया, बदले में उसने आपका भला किया, जहां एक्सचेंज होता है उसको पाप या पुण्य नहीं कहते हैं, वो एक्सचेंज ही होते हैं। आप पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आपको देने का पुण्य नहीं लगता, पर आप जब देते हैं बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, तब आप कहते हैं ये दान है, ये पुण्य है। अगर देने पर आपको कुछ मिल गया तो वो पुण्य कैसे हुआ? वो आपने पैसा दिया, चावल खरीदा, आटा खरीदा, घर खरीदा, बाजार खरीदा, सारा देश खरीद लीजिए, आपने दिया और आपको मिला, पर दिया पर लेने की कोई इच्छा नहीं रखी या आपको मिली नहीं, तो वो दान में हुआ, वही पुण्य हुआ। तो तो हमने जो किया उसका फल हमें जो बाद में मिलेगा, अभी मिला नहीं है, उसी को हम पाप या पुण्य कहते हैं। अगर यही पाप है, यही बुराइयों को हम पाप कहते हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, डाका डालना, जो भी गंदे काम करना, गंदा सोचना, जो भी बुराइयां है, यही पाप है। ये पाप अगर तीर्थ जाने से धोता है, अगर तीर्थ में नहाने से धोता है, तो फिर एक तरह के हम लोगों को लाइसेंस देते हैं कि आप खूब बुराइयां करो, खूब हत्या करो, खूब खून करो, खूब बेईमानी करो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सल्यूशन है। सल्यूशन है कि आप किसी खास, जो स्पेसिफिक नदी हम आपको बताएंगे उसमें डुबकी लगाना, वहां बैठे हुए पंडा को आप पैसा देना, या आप खास तरह के तीर्थ में जाना, तो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। इसीलिए आप करते रहो। और यही हुआ भी। जब जब हमने ये कहा कि ये जो शॉर्टकट हुए है कि आप अमुक व्यक्ति को ईश्वर मान लो तो आपके पाप माफ हो गए, आप खास तरह के जगह जाकर के कन्फेशन कर दो फादर के पास, पाप माफ हो गए, आप एक खास तीर्थ में जाकर के घूम फिर करके प्रसाद लेकर आ जाओ, पाप माफ हो गए, तो हुआ क्या, पापी और धार्मिक दोनों मिक्स हो गए। तो जो धार्मिक है वही पापी होता है, क्योंकि ज्यादा अगर पाप को क्षय करने के लिए हमें तीर्थ जाना है, मंदिर जाना है, जहां भी जाना है, तो इसका मतलब पापी लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा, और ये दिखता है। बार बार हम कहते हैं, आज का जो रिलीजियस फेनोमेना है पूरे दुनिया में, कोई भी रिलीजियन हो, उसका रिजल्ट हमें दिखता नहीं है कि एक व्यक्ति धार्मिक होने से ज्यादा अच्छा बनेगा, अच्छा प्यारा बनेगा, ज्यादा सभ्य बनेगा, ज्यादा ज्यादा ईमानदार बनेगा, ज्यादा दयालु बनेगा, ऐसा नहीं दिखता है। उसका कारण है कि हमने धार्मिक चीजों में ये जो चीजें बाद में जोड़ा, जो कि हिंदू धर्म में, खास करके हमारे धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे शास्त्रों में, इसकी कोई किसी तरह की कोई इमेजिनेशन भी नहीं किया था, जो बाद में हमने जोड़ा, और ये कभी भी हमें अच्छा नहीं बनाता है, ना हमें धार्मिक बनाता है, ना एक अच्छा आदमी बनाता है। तो इसका अर्थ है कि आप तीर्थ में नहाएं या ना नहाएं, अगर आप चरित्र से अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, आपका कर्म अच्छा है, तभी आपका पाप पुण्य का हिसाब होगा, न कि किसी तीर्थ जाने से। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये तीर्थ शब्द आया कहां से। प्राचीन काल में, पहले तो लोग इतने ज्यादा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको कहता हूं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दुनिया में जैसे जैसे मॉडर्न रिलीजियंस आए, सुपरस्टिशियंस बढ़ा, हिंदुस्तान में उल्टा हुआ कि हमारा धर्म जो शुरू में था वो मोर लिबरल था, वो रीजनिंग बेस्ड था, मोर लॉजिकल था। जैसे जैसे हमारे यहां परिवर्तन आया, हम ज्यादा सुपरस्टिशियस हुए, यहां उल्टा था, यहां लोग ज्यादा पहले सुपरस्टिशियस हुए, बाद में सुधरे, हम ज्यादा उल्टा हो गए। तीर्थ का जो अर्थ था हमारे यहां, तीर्थ का जनरल मीनिंग होता है कि तैरना, पार करना, जैसे आप मंत्र गाते हैं ना, भजन वगैरह, संसार सागर से तर जाऊं, वो तर जो शब्द है संस्कृत में, तर शब्द, उससे तीर्थ बना, जहां हम पार कर जाते हैं। ज्यादातर प्राचीन काल में लोग कहां जाते थे, ये जो तीर्थ क्षेत्र जिसको आजकल आप भारत में देखते हैं, वो वाराणसी सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, बाकी जो भी है, ये सब विद्या का क्षेत्र होता था। अभी अभी आपने दिवाली मनाया, उसमें भी यही आप प्रार्थना करते थे, वही था कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाऊं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाऊं, मौत से अमरत्व की ओर जाऊं। ये ज्ञान बड़ी कमाल की चीज है, जो हमें हर तरह के बुराइयों से आगे लेता है। तो जो जो ज्ञान का क्षेत्र बना, वो सब तीर्थ इसीलिए बना। एक तो बच्चे जो वहां ज्ञान प्राप्त करते थे, जिसको भी साल में, जीवन में जब भी छुट्टी मिलती थी या मौका मिलता था, वो तीर्थ जाता था, पाप कम छ, छुड़ाने नहीं, वो ज्ञान प्राप्त करने, महीने 15 दिन 8 दिन जितने दिन वो उस क्षेत्र में जाता था, वो ऋषि आश्रमों में, ऋषियों के सन्यासियों के आश्रमों में रह के ज्ञान प्राप्त करता था, उस ज्ञान से उसके उसके दृष्टि खुलती थी, उसकी बुराइयों की भावना घटती थी। ये तीर्थ क्षेत्र था। अब तीर्थों में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, अब तीर्थ में कोई कोई आपको अध्यात्म देने वाला नहीं मिलेगा, बस डुबकी लगाओ, पंडा को दक्षिणा दो, 10-12 मंदिर में घूम लो, सारे पाप माफ हो गए। तो तीर्थ जो था कभी ज्ञान का क्षेत्र था, अध्यात्म का क्षेत्र था, साधना का क्षेत्र था, अब वो साधना तीर्थ स्थान विद्या क्षेत्र साधना क्षेत्र धीरे धीरे पाप धोने के क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया। जितने भी आप भारत में जितने पुराने तीर्थ क्षेत्रों का नाम आप जानते हैं, वैसे नए नए क्षेत्र बनते जाते हैं, हर 15-20 साल में एक एक नए नए जगह बनते जाते हैं, पर अगर आप कभी सर्वे करें, जितने भी पुराने जो तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब एक दिन विद्या का क्षेत्र थे, जहां पढ़ाई, खास करके विद्या का मतलब जहां अध्यात्म ज्ञान का क्षेत्र था, जहां ऋषि मुनि ज्ञान बांटते थे, ज्ञान की चर्चा होती थी और लोग वहां जाते थे, ज्ञान प्राप्त करके आते थे। अगला जो प्रसंग जो स्वामी जी उठाते हैं, एंड बाय कंस्टेंट रिसाइटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एक्सेट्रा, कि इससे भी हमें पाप की मुक्ति होती है, सिद्धि होती है, जिसको हम कहते हैं जप करना। जप करना, वैसे तो जप करना एक प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पद्धति है योग साधना में या कहीं भी, पर जप का अर्थ होता है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका आप जपते हो, जब आप कोई चीज जपते हो तो उसके अर्थों का, उसका मतलब है जब आप उसके बारे में चिंतन करते हो, जब आप उसके बारे में मनन करते हो, जब आपके माइंड में, आपके मन में उसके ऊपर विचार चलता है, जब वो विचार कंटिन्यूअसली चले, उसी को हम जप कहते हैं। आपने एक दिन 2 मिनट बैठ गए, ईश्वर के बारे में सोच लिया, 5 मिनट बैठ गए तो चले गए। अगर आप इसको कंस्टेंटली आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आप सोचते हैं, उसको मनन करते हैं ईश्वर के बारे में, किसी के बारे में भी आपको अगर चिंतन करते हैं, अगर वो एक कंस्टेंट प्रोसेस होता है, अगर वो बिना किसी रुकावट में एक प्रोसेस होता है, उसी को हम जप कहते हैं। जैसे आपको कहा जाता है ओम का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, आप करते हैं, तो ओम को जपने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों लोग दुनिया में ओम जपते थे, ओम ओम करते रहते हैं, बकरी का मांस खाते रहते हैं। मैंने देखा हमारे गांव में बचपन में, जब हम छोटे थे, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो उतना हमें धर्म फर्म का ज्ञान नहीं था, तो हमारे पड़ोस में गांव में एक व्यक्ति थे, अब बड़े, मतलब जैसा कि आप लोग धार्मिक जैसे व्यक्ति को सोचते हैं, हम लोग वैसा ही व्यक्ति था, मतलब धोती पहनता था, क्योंकि धोती पहनने से आपको लगता है व्यक्ति बड़ा धार्मिक होगा, उसके बाल फाल मुंडवा करके, यहाँ बड़ी सी लंबी सी शिखा थी, चलक चंदन तिलक लगाया हुआ था, माला ही लगाया हुआ था और माला जप रहा था, वो हमेशा जपता रहता था और खड़ा वो पहनता था। मतलब ऐसा कोई आपको सिग्नल नहीं मिलेगा कि ये कोई आम आदमी है, मतलब बड़े से बड़े नास्तिक भी जरूर उसके पैर में एक बार गिरेगा, इतना सुंदर जो भी धार्मिक दिखने की सारी परिपाटी थी। वो जो हफ्ते में गांव में क्या होता है, शहर में भी होता है कि हफ्ते में 2 दिन वो सब्जी का मार्केट लगता है, जो टेम्प्रेरी मार्केट जिसको आप हाट कहते हैं, बाजार कहते हैं, और वो सब्जियों का होता है, वहाँ मांस मछली भी बेचता है, और वो खड़ाऊ पहनने वाले, वो बाबा नहीं थे पर हमेशा जपते थे, गांव में रहते थे, लोग उनको बड़ा इज्जत करते थे, बड़े पहुंचे हुए, तब ये वो हाट में जब भी बाजार में दिखते थे, वो मांस वाले दुकान में दिखते थे और वहीं थैला लेकर घर जाते थे, पर जरूर ये चलता रहता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भाई 1 किलो पैक कर देना चिकन, हरे कृष्ण, 2 किलो मछली पैक कर देना, ओम गुरु, बस करते रहिए जिंदगी भर। आप दुकान में बेईमानी करते रहिए, जब करते रहिए, आप ऑफिस में बेईमानी करते रहिए, जब करते रहिए, आप स्कूल में बेईमानी करते रहिए, जब करते रहिए, आप अपने अपने जिंदगी में बेईमानी करते रहिए, जब करते रहिए, क्या फायदा सिवाय जीव का एक्सरसाइज करने का। कभी किसी व्यक्ति को जब से फायदा नहीं मिला जो सिर्फ जपता रहा, किसी को नहीं मिला। अगर उसने उसको जीवन में धारण नहीं किया, अगर उसने उसको हृदयंगम नहीं किया, अगर उसको उसने दिल में जिया नहीं, अगर जिस नाम को जपता है अगर उसको उसने दिल में उसके प्रति तड़प नहीं हुआ, उसके प्रति वो व्याकुलता नहीं हुई, उसके बारे में वो जानता ही नहीं है, तो यूजलेस है। छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, आपको कोई कितना बढ़िया खाना पका कर दे, कितना भी स्वादिष्ट खाना हो और आप उसको खाएं भी, पर अगर आपका मन उस दिन किसी कारण से परेशान है या बहुत खुश हैं, आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, आपको बॉस बना दिया गया, 15 साल से इंतजार कर रहे थे नहीं हो पा रहा था, खूब पार्टी हुई, या बिजनेस में आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या आपका बच्चा बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, या टीवी में कोई ऐसा जो खेल के या प्रोग्राम के मैच जो जिसके लिए आप थोड़ी बहुत, हम लोग कभी कभी किसी खेल या किसी में बड़ा क्रेजी होते हैं, भाई बिल्कुल आज देखना है, जैसे टेक्सास में वो फुटबॉल का चलता है तो आप उसमें देख रहे हैं, पर खाना बड़ा बढ़िया बना हुआ है, टेस्टी से टेस्टी खाना बना है और आपको कह रहे हैं खाना खाओ तो आप खा रहे हैं। और खाना खाओ अगर बोल दिया तो भी आप टोक दे तो चुप रहना, क्यों डिस्टर्ब कर, तो रख दो यहां चुपचाप खा रहे। वो खाना कितना भी बढ़िया हो आप खाना खा लेंगे पर उसका स्वाद आपको कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका मन उस खाने के साथ नहीं है। और ईश्वर वो सिर्फ फिजिकल ईटिंग है, ठीक है, उसका जो फायदा आपको मिलेगा खाने का, जो जो भी उसका आपको प्रोटीन मिलना है वा फैट मिलना है, जो कुछ कैल्शियम मिलना है वो सब मिलेगा, पर उसका स्वाद, उसका जो ज्ञान आपको नहीं हुआ। इसी तरह मान लीजिए मैं किसी का नाम जपता रहूं, राम का, विष्णु का, ओम का, गायत्री का, हरि का, जीसस का, किसी का भी जपता रहूं, दुनिया में हर रिलीजन में ये जपने की परंपरा है, पर अगर मेरा मन उसके साथ अटैच नहीं है, मैं मन से ऐसा नहीं करता हूं, तो वैसे ही है जैसे कि आप बिना मन के कोई भी काम करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। खाना अच्छा बनना बेकार गया, इससे अच्छा कोई चावल उबाल के रोटी वैसे ही अधिक अच्छी रख देते अच्छा होता, क्योंकि आपको उस दिन फुटबॉल मैच देखना था, उस दिन करना था। तो जब का फायदा होता है जब हम उसको दिल में उतारें, मन में चिंतन करें, उसमें डूब जाएं, तब फायदा होता है। संख्याओं से कोई फायदा नहीं होता है। स्वामी जी एक जगह कहते हैं, आजकल ये जो चलता है 108 अमुक जप लो, 1008 जप लो, तो स्वामी जी लिखते हैं क्या मतलब 108 जपने से ईश्वर मिल जाएगा, अगर 107 हो गया ईश्वर नाराज हो जाएगा, 109 हो गया तो नाराज हो जाएगा। क्यों आप गिन के ईश्वर का नाम लेते हो? क्या आप जिससे प्यार करते हो, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, जिससे भी आप प्यार करते हो, क्या आप उसका नाम ले लेकर के 8 बार लूंगा तभी वो सुनता है, नहीं तो 7 बार होगा तो नहीं सुनेगा? आपको अगर ईश्वर का नाम लेना है तो लीजिए, लाखों बार लेना है लीजिए, पर गिन के क्यों लेंगे, माला क्यों गिनेंगे, क्यों मतलब हिसाब क्यों रखते हैं कि मेरा तो 1 लाख हो गया? मतलब जो इंटेंशन है कि ईश्वर को बायस्ड करना, उसको उसको मतलब ये या तो हमें सिखाया गया है या मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इतना नाम अगर जप दूं, इतने कर दूं तो ईश्वर खुश हो जाएगा, तो मैं कितना भी बुरा हूं, गंदा हूं, जैसा भी हूं, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा और मुझे ठीक कर देगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं ये जो कंस्टेंट रिसाइटेशन जो जप है, ये जप केवल नामों के जप लेने से कुछ नहीं होगा, जप जरूरी है, जिस चीज को आप जपते हो उसके अर्थों का चिंतन हो और उसके उसके मन के साथ वो दिल के साथ जुड़े तभी वो लाभ करता है। अगला, इंडिफरेंस टुवर्ड्स द एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज थ्रू द विकेड एडवाइस ऑफ हिपोक्रेट्स। उसका परिणाम क्या हुआ? जब हमें बताया गया कि धर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये सब आप करेंगे तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी, ये सब अगर करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, मतलब अगर आप हवन करते हैं कि आपको पाप की मुक्ति मिलेगी या पुण्य मिलेगा, या आप मंदिर में जाते हैं पाप की मुक्ति मिलेगी या पुण्य मिलेगा, या हम प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो भी धार्मिक कृत्य करते हैं कि इससे पाप घटेगा या पुण्य मिलेगा, तो इससे तो एक चीज तो हुआ कि हम बुरे और अच्छे कर्मों को फर्क करने के लिए हम लोगों के दिमाग में ताला लगाते हैं। हम बुरे कर्म उल्टा इससे हम बुरे कर्म करने के लिए ज्यादा बच्चों को व लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं। क्यों? बुरे कर्म करो और इसका सल्यूशन हमारे पास है। हम अच्छे काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि हम कभी नहीं कहते हैं कि धार्मिक वो है जो अच्छा काम करता है। हमने कभी नहीं सुना व हमें नहीं कहा जाता है कि बुरा काम करने वाले को ईश्वर कभी नहीं मिलता। जब हम कहते हैं कि आप जप लो, तप लो, पूजा कर लो, आपको ईश्वर मिल जाएगा, तो आपकी सारे बुरे काम माफ हो गए, तो हम एक करप्ट वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, हम एक भ्रष्ट समाज बनाते हैं। और उसका दूसरा परिणाम क्या होता है कि लोगों की स्वाध्याय के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। स्वाध्याय मतलब अपने को जानने की, ईश्वर को जानने की, धर्म को ठीक से जानने की जो प्रक्रिया है, उसके जानने के प्रति हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर एक काव्य लिखा, पोएम लिखा, पोएट्री। वो भक्त थे, उनके राम के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, और वाल्मीकि आम लोगों को वाल्मीकि रामायण संस्कृत में समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने अपनी श्रद्धा भाव से उसको लिखा कि लोग राम कथा जो संस्कृत नहीं जानते हैं, वो राम कथा को लोक भाषा में पढ़ें। अब तो हम रामचरितमानस पढ़ते नहीं है, पढ़ते इसीलिए, जो भी कोई पढ़ता है इसलिए नहीं पढ़ता है कि वो राम कथा सुनना समझना है, पढ़ना है, इसीलिए कि इसे पाप की मुक्ति मिलेगी, घर में बच्चा पैदा होगा, नौकरी में ठीक हो जाएगी, हनुमान चालीसा इसीलिए पढ़ते। तो स्वाध्याय के प्रति, जो सेल्फ स्टडी के प्रति हम एक तरह के लोगों को उदासीन बनाते जा रहे हैं, लोग धीरे धीरे इंडिफरेंट होते जा रहे हैं पढ़ने के प्रति। और यही दिखता है हमारे समाज में कि लोग रिलीजियस शास्त्रों को पढ़ते कम है, क्योंकि उनको पता है मंत्र पढ़ देने से पुण्य मिल जाएगा, मंत्र समझने की जरूरत क्या है, किताब पढ़ देने से पुण्य मिल जाएगा, किताब पढ़ने की जरूरत क्या है। इसीलिए स्वामी जी कहते ये बड़ा हानिकारक है, खतरनाक है। अगली बात वो कहते हैं, बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग सल्वेशन सिंपली थ्रू हियरिंग और रीडिंग ऑफ स्पूरियस बुक्स एज पुराणाज एटसेट्रा। ये भी एक परंपरा चली कि आप जैसे बहुत सारे लोग सुबह उठ के गीता पढ़ते हैं, और आप सबको पता है जिस व्यक्ति ने भी गीता को समझा है उसका जिंदगी बदल गया है। पर लाखों लोग गीता इसीलिए नहीं पढ़ते कि उनको समझना है, सुबह उठ के नहा धो करके गीता पढ़ते हैं, भाई कुछ नहीं तो आज समय नहीं तो चार श्लोक पढ़ के चले, क्योंकि ना पढ़ने से पाप लग जाएगा, पढ़ने से पुण्य मिलेगा। बहुत सारे लोग सुबह उठ के वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बाघर में कराते हैं, क्योंकि उससे पुण्य मिलेगा, ना करने से पाप मिलेगा। किसी ग्रंथ को पढ़ने से मुक्ति मिलती है, ये कितना, ये कभी हम दिमाग लगा के सोचे तो हमें अपने ऊपर हंसी आनी चाहिए कि किताब पढ़ने से कभी मुक्ति मिलती नहीं है, मुक्ति तो परिश्रम से मिलती है। अगर इस देश में जो स्लेव थे, जो जो खरीदे गए इंसान को खरीदा बेचा जाता था, अगर उनको उनसे मुक्ति मिली तो वो किसी ग्रंथ को रोज पाठ करने से नहीं मिला, अपने संघर्ष से, परिश्रम से मिला। आप अगर गरीबी से धनी बने तो किसी ग्रंथ के जप करने से नहीं बने। कोई दुनिया में अगर ज्ञानी बना है तो वो ग्रंथ के पाठ करने से, सुबह शाम पाठ करने से नहीं बना है। कोई अगर ईश्वर को पाया है किसी किताब को पढ़ के गुनगुना से, केवल केवल उसकी पाठ करने से नहीं, उसको समझने से बना है। इसीलिए किसी भी पुराण हो या ग्रंथ हो, उसको सिर्फ सुनने या पढ़ने मात्र से कभी कोई पाप पुण्य का फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है हम सब ये चीजें जानते हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सब चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं, पर हमें और आपको ये सब इसीलिए जानना और जरूरी है क्योंकि हमें किसी को बताया जा सके कि हमारा धर्म ऐसा नहीं है जैसा आप हमारे ऊपर जो आक्षेप लगाते हो, या जो नासमझ लोग हैं उनको हम समझा सकें, तुम जिस रास्ते से धर्म को समझना चाहते हो ये रास्ता नहीं है। एंड दस नेग्लेक्टिंग द स्टडी ऑफ ट्रू स्क्रिप्चर्स फिलोसफीज एंड साइंसेस द लिविंग, इसीलिए लोग क्या करते हैं, तो अब शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, अच्छे दर्शन को पढ़ना छोड़ दिया, जीवन को एक सही राइटियस लाइफ, एक जो जो सही रास्ते पर जीने की आदत को छोड़ दिया, योग आदि का अभ्यास करना छोड़ दिया, ईश्वर को मानना छोड़ दिया, ईश्वर की भक्ति करना छोड़ दिया। आपको आप जानते हैं बहुत सारे जो जो हमारे जो लोग हैं, शायद ये उनको दिमाग में कभी ये बात आई नहीं है कि वो कितना हम लोग ईश्वर से दूर हो गए हैं, कितना नास्तिक हो गए हम अपने अनजाने में। कैसे? जब हम ईश्वर की पूजा छोड़ करके अपने गुरुओं की पूजा करने लगते हैं, जब हम किसी बाबा की पूजा करने लगते हैं, जब हम किसी इंसान को भगवान मान के उसकी पूजा करने लगते हैं, हम भूल जाते हैं वो असली ईश्वर को। वो तो वैसे ही हुआ कि पड़ोसी में कोई 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 रिश्तेदार, कोई पड़ोसी है जो मीठा बोलता है, टॉफी दे देता है, और बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर उसको बाप पापा पापा बुलाता है, मम्मी मम्मी बुलाता है, और हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर जो है वो किडनैपर हो, वो मारने वाला हो, कैसा भी हो, और होता यही है। और धार्मिक क्षेत्र में भी वही होता है, जिन जिन को आपने भगवान माना वा लोग मानते हैं ईश्वर को छोड़कर, वो सबके सब फ्रॉड है। ये आप लिख लीजिए, कोई भी इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बुलवाने की कोशिश करता है कि मैं भगवान हूं या भगवान जैसा हूं, उससे बड़ा फ्रॉड दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये नोट कर लीजिए, वो ईश्वर को फ्रॉड करता है, वो ईश्वर को चीटिंग करता है। आप में से, हमारे में से इंसान को हम चीट करते होंगे, वो व्यक्ति खुद भगवान को चीट करता है। और ऐसे व्यक्ति को जब आप भगवान और हम भगवान मानते हैं, हम बेवकूफ हो जाते हैं और हम अनजाने में नास्तिक बनते हैं। वो सत्य ईश्वर को छोड़कर, अपने असली माँ बाप को छोड़कर, एक स्ट्रेंजर ने क्योंकि टॉफी या चॉकलेट दिया या घुमाने का वादा किया, हमने उसको माँ बाप समझ बैठा। इसी तरह कोई बाबा कहता है मैं तेरी बीमारी का इलाज कर दूंगा, मैं तेरे घर में नौकरी कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, तो वो भगवान हो जाता है टॉफी बांटने वाला। और जो भगवान संसार को बनाता है, इस सूरज चंद्र तारों को बनाया, आपकी हड्डी को बनाया, मांस को बनाया, आपके शरीर को बनाया, आपकी बुद्धि को बनाया, वो आपके लिए मायने नहीं रखता। क्या हम अनजाने में नास्तिक नहीं बनते? तो ये जानना बड़ी जरूरी है और जनाना भी बड़ी जरूरी है कि हम लोग धीरे धीरे कैसे नास्तिक बनते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा धर्म एक दिन ईश्वर रहित हो जाएगा, केवल गुरु बाबा और नकली भगवान मय हो जाए, और कहीं आपको असली भगवान दिखाई ना दे, कोई असली भगवान के प्रति स्तुति ना हो। घरों में अब ईश्वर के फोटो नहीं, जो लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, पहले कभी शिव के कृष्ण की फोटो लगाते थे, वह किसी के भी लगाते थे, चलो जैसे भी हो, अब तो वो शिव के बाप गणेश के फोटो भी आप घर में नहीं दिखते, अब तो अमुक बाबा का फोटो दिखते, अमुक गुरु के फोटो देखते। अब तो हमने देखा आजकल टीवी में वो गुरु, उसके बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, चारों जेल में है करप्शन के केस में, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, रेप के केस में, पर लोगों करोड़ों लोगों के घर में आज भी वही पूजे जाते हैं। वो तो जेल में गए, उनका सजा मिलेगा, उन भक्तों का क्या होगा जो 25 साल से उनको भगवान मान के पूछते थे, जब उनका गुरु हुआ, उनका भगवान रेप केस में जेल जाता हो। सज्जनों, ये समझने की जरूरत है कि हम कहीं असली ईश्वर से भटक तो नहीं रहे इन गुरु बाबा आचार्य पंडित को चक्कर में। अपने साथ उस असली ईश्वर के जोड़िए, बीच में किसी को आने मत दीजिए। ज्ञान सबसे लीजिए, ज्ञान सबसे लीजिए, जो सीखना है सबसे सीखिए, उनको जो दक्षिणा है जरूर दीजिए, पर ईश्वर आपका के साथ आपका अपना संबंध है। आपका बाप एक ही हो सकता है, आपकी माँ एक ही हो सकती है दुनिया में, और बाकी सबको माँ बाप के जैसे इज्जत दे सकते हैं, पर आपके माँ बाप तो आप एक ही हो सकते हैं, ईश्वर एक ही होता है। आप घूम फिर करके अड़ोसी पड़ोसी में हर किसी को ईश्वर और भगवान मत समझिए। तो स्वामी जी का दर्द यही था, और स्वामी जी इसी बात को रखना चाहते थे। आगे की अगली स्लाइड लगाएंगे। द सेक्टेरियन एंड सेल्फिश पीपुल, ये एक टॉपिक चेंज हो गया थोड़ा, इसकी हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करें। चलिए, जब तक स्मृति जी नहीं आती थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। द सेक्टेरियन एंड सेल्फिश पीपुल प्रिवेंट अदर पीपुल थ्रू देयर फॉल्स टीचिंग्स फ्रॉम एक्वायरिंग नॉलेज एंड एसोसिएशन विद मेन ऑफ लर्निंग एंड स्नेयर देम इन देयर ओन नेट्स एंड दस रियून देम फिजिकली मेंटली मेटेरियल दे वांट। ये क्या है? हो सकता है ये जो अभी जो टॉपिक हम छेड़ रहे हैं ये आपसे रिलेटेड ना हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दुनिया देखी है, तो काफी सारे मन में बदलाव आ चुका है। पर यकीन मानिए, आपके जो दूसरे भाई बंधु भारत से यहां भी आए हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे हजारों लाखों भाई बंधु है जो इस विचार को मानने वाले हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसको हम जाति प्रथा कहते हैं, कि एक आदमी एक खास माँ बाप के पेट से पैदा होने के कारण उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है उसको। और आज भी भारत में ऐसे हजारों लाखों गांव हैं, शहर हैं, जहां छोटे जात तथा कथित सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोगों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं। अभी तमिलनाडु में घटना बताते हैं कुछ दिन पहले की, तो जो बड़े जात के जो 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 गांव है उसके पास में पड़ो, हमेशा जो छोटे जात के जो गरीब लोग हैं पड़ोस में होता है, और जो मेन रोड वो बड़े जात के गांव के जो जहां रहते हैं उसी गांव से निकल के जाता है, तो उनको चप्पल पहनने का साइकिल चलने का कोई अधिकार नहीं था। अब कोई पढ़ लिख गया, आजकल के लड़के फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसके बावजूद भी उनको अलाउ नहीं होता है, तो शहर में जाकर जो भी करे, गाँव आए तो चप्पल हाथ में उठा करके वो रोड क्रश करना पड़ता है जहां तक वो बड़े जात के लोग रहते हैं, फिर वो अपने गांव में जाएंगे। हर किसी ने हिम्मत करके वो चप्पल पहनकर चला गया और पूरी कमेटी बैठा के, उनके पंचायत बैठा के, उसको बाल मुंडल के पूरे शरीर को उसको तड़पा करके, उसको अधमरा करके गांव के बाहर रखा, और उनके परिवार वालों को गाँव तड़प ओके तड़ी पार कहते हैं गाँव से बाहर कर दिया। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट मैंने आपको बताया। ये 21वीं शताब्दी में भी हम लोग, आज भी हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन ऐसा इस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, और लाखों करोड़ों भाई बहन ऐसे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने इंसान की तरह जी ना सके, क्योंकि खास तरह के घर में पैदा हुए हैं। और ये जो ट्रेडिशन शुरू हुआ लाखों हजारों साल पहले, सबसे पहले कि उनकी पढ़ाई का अधिकार उनसे छीन लिया गया, कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, यहां तक कि हजारों सालों तक मध्य युग में बौद्ध काल तक शुरू हो गया था ये पीरियड, कि स्त्रियों को और जो तथाकथित छोटे जातियों को लोगों को वैसे ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, वेद वगैरह पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया उनको। जो उन दिनों जो सबसे सभ्य भाषा बोली जाती थी, जैसे आजकल थोड़ा सिविलाइज्ड लैंग्वेज का मतलब लोग अंग्रेजी बोलने पर अपने आप को थोड़ा ज्यादा सिविलाइज समझते हैं, वैसे उन दिनों संस्कृत बड़ा क्योंकि मानी जाती थी, तो उन पर यह ऑर्डर था कि उनको संस्कृत वो नहीं बोल सकते, वो अपनी जो भी टूटी फूटी भाषाओं में जो गाँव की भाषा में बोलेंगे। इसीलिए उन दिनों जितने नाटक लिखे गए संस्कृत में, हजारों जो ड्रामाज लिखे गए बौद्ध काल के बाद से, और कम से कम ये हजार साल का हिस्ट्री है, जितने भी संस्कृत में लिटरेचर या नाटक है उनमें जो डायलॉग है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार के जो पुरुष पात्र है, जो जो मेल कैरेक्टर है, वो संस्कृत में बोलते हैं, पर चारों वर्णों के जो फीमेल है वो प्राकृत का मतलब जो जिसको आजकल थोड़ा आप कहते हैं गंवार भाषा में बोलते हैं, और जो छोटे जात के लोग हैं गवार भाषा में बोलेंगे, वो समझते हैं, वो संस्कृत समझ सकते हैं, वो जानते हैं, पर बोल नहीं सकते। क्यों? उनको नीचा दिखाना भी जरूरी है, नीचा रहना भी जरूरी है। ये जो जबरदस्ती किसी के जन्म के आधार पर कोई लड़की बनकर पैदा होती है, वा किसी एक खास माँ बाप के घर में पैदा होता है, इसके आधार पर उसका पढ़ाई लिखाई छीन लिया जाता है, उसको जीवन में जीने की कला छीन दी जाए, वो किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, रिलीजियन के नाम पर। और जबकि ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, हजारों सालों के भारत के इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्र जो छोटा था वह ब्राह्मण बड़ा था। पिछले बार जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे यहाँ ऐसे जितने भी आर्ट के, क्राफ्ट के जितने लिटरेचर है, सब शूद्रों को लिए था। मतलब जो आर्ट और क्राफ्ट से लिटरेचर जितने चीजें हैं वो शूद्र काम। क्राफ्ट में तो आपका इंजीनियरिंग भी आता है, इसलिए पिछले बार मैंने कहा जो इंजीनियरिंग है वो भी शूद्र ही होते हैं। ये डॉक्टर लोग जो होते हैं वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं, प्राचीन काल में उनको वैद्य कहते थे। तो इसका अर्थ वो कोई खराब चीज नहीं था, वो बुरी चीज नहीं था। जो सेवा के क्षेत्र में जाता है वो शूद्र होता है, जो ज्ञान के क्षेत्र में जाता है वो ब्राह्मण होता है, जो जो पावर के क्षेत्र में जाता है वो पावर पॉलिटिकल पावर हो, वो फिजिकल पावर हो, वो क्षत्रिय होता है, जो धन के क्षेत्र में जाता है वो वैश्य होता है। और सबको समाज में जीने का समान अधिकार होता है, सबको रहने का समान अधिकार होता है, था और होना चाहिए। हमने हमारे में से जो 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 जैसे बताया सेक्टेरियन और जो सेल्फिश जो पढ़े लिखे लोगों ने, और ये देखिए ये भी बड़े इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ हुआ, ये दुनिया में हर जगह हमेशा जो सो कॉल्ड एलिट लोग होते हैं, जो एलिट लोग होते हैं, वो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं कि जो जो हमेशा समाज को पिरामिड की तरह बनाना कोशिश करते हैं कि कुछ गिने चुने लोग हमेशा ऊपर रहें जो रेस्पेक्टेबल हो, बाकी लोग उनको रेस्पेक्ट करें। वो रेस्पेक्ट तभी करेंगे जब कम लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग अनपढ़ रहेंगे। जब कम लोग पैसे वाले होंगे, बहुत सारे लोग कम पैसे वाले होंगे, तभी रेस्पेक्ट मिलेगा। ये दुनिया में यही हुआ। यूरोप वालों ने अफ्रीका से लेकर एशिया तक लोगों को अपना जानवरों की तरह उनको मजदूर बनाया, अपने घर में कुत्ते बिल्लियों की तरह खरीद करके पाला रखा। भारत में उनको शूद्र और महिलाओं के नाम पर किया। यहाँ भी आज तक अमेरिका में भी कोई स्त्री आंदोलन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि ये कोई ज्यादा दुनिया में बदलाव आ रहा है। पर ये जो सोच है, ये एक इंसान की जो हमेशा कुछ लोगों की ये मेंटल इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियां है, जो अपने आप को अपने जो अपने सुपीरियरिटी की जो है उसको बनाए रखने के लिए, अपने उस मैं ऊंचा हूं ये भाव को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को नीचा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समाज पर उनका दबदबा है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख डालते हैं। उस हम पहले जमाने में शास्त्र लिख डालते थे, आजकल कॉन्स्टिट्यूशन बना डालते हैं। यूरोप में और अमेरिका में सैकड़ों सालों तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहा कि जो स्लेव्स हैं वो 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 बनी रहनी चाहिए, ये हमारा हक है कि हम उन इंसानों को काले या जिनको हम उनको अपने गुलाम बना के रखें, ये हमारा हक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में और महिलाओं को और जो जो काले लोग हैं बा दूसरे लोगों उनको रहना पड़ेगा, वो हमारे बराबर हो ही नहीं सकते। ये लिखने वाला कौन था? वही जो जो पिरामिड के ऊपर के लोग हैं, जो हमेशा सोसाइटी पर राज करते हैं। भारत में भी वही समस्या चली। पर जैसे जैसे हमारे अंदर हम पढ़े लिखे होते हैं, हमारी समझदारी बढ़ती है, ये सब हटनी चाहिए। पर सज्जनों माताओं, ये हट अभी भी नहीं रही है। यहाँ तक कि हम लोग अमेरिका आने पर भी हमारे से ये दिमाग से हट नहीं रहा है। हम अभी भी कुछ कुछ लोगों को छोटा समझते हैं, जेंडर के नाम पर या कास्ट के नाम पर समझते हैं। हम नहीं समझते तो हमारे भाई बहन तो समझते हैं। पर ये सोच दूर तक जाना चाहिए कि इंसान को धर्म के नाम पर बांटो मत, छोटा बड़ा मत करो, जेंडर के नाम पर मत करो, जात के नाम पर मत करो। ईश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया, पानी बनाया, हवा बनाया, नदी बनाई, सबके लिए बनाया, सबको अधिकार है। तो तुम कौन हो ईश्वर के उन चीजों पर हक जमा करके दूसरे को छीनने के लिए? ये भावना जितनी जल्दी सबके अंदर आए, जितने तरह की वो प्राचीन तरीका हो या नए तरीके, उतना अच्छा है। बाकी चीजें फिर हम आगे करेंगे। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।